क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले किरण बन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया।
हम शांति। सूर्य की अरुणिम विभाले किरण बन उतरा नयन में। कौन? ये पर्व। सूर्य की अरुणिम विभाले, सूर्य की किरण लेकर उतरा है यह पर्व। कहाँ उतरा है? नैनों में, आत्मा में, चेतना की गहराई में। सूर्य की अरुणिम विभाले किरण बन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा गंध बन विचरो पवन में। साधना के प्रकंपन फैले। अगर कोई एक साधना चालू करता है तो उस साधना के प्रकंपन फैलते हैं। एक कोई महान संकल्प ले लेता है तो उस संकल्प के प्रकंपन फैलते हैं। एक कोई महान भावना में स्थित हो जाता है तो उस भावना के प्रकंपन फैलते हैं। संडे की मुरली, बाप दादा ने दो दृश्य देखे। पहला, स्नेह संपन्न भावना। दूसरा, वाइब्रेशंस। कौन से वाइब्रेशंस? कौन सा लक्ष्य? संपन्नता के लक्ष्य के, उमंग उत्साह के वाइब्रेशंस। सूर्य की अरुणिम विभाले किरण बन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति जीवन में आए, क्रांति केवल शब्द न रह जाए, क्रांति केवल एक पाठ न रह जाए, क्रांति केवल एक भाषण न रह जाए, क्रांति केवल अतीत की विगत की कोई घटना न रह जाए, क्रांति वर्तमान हो जाए। क्योंकि वर्तमान की क्रांति ही भविष्य के लिए इतिहास बनेगा। एकांत तट में एक योगी जो कि कवि था बैठा था। दूर दूर तक कोई नहीं था। कवियों को एकांत पसंद है, मौन पसंद है, क्योंकि एकांत और मौन में ही क्या होता है, कविताओं के लिए नए विचार उभरते हैं। जो चित्रकार होते हैं, जो कवि होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, जो मूर्तिकार होते हैं, जो रचना करने वाले होते हैं, वो हमेशा कहाँ चले जाते हैं, एकांत में, दूर चले जाते हैं, स्थूल एकांत की तरफ, स्थूल मौन की तरफ। हम बातें करते हैं मन के मौन की, दिन रात मन का मौन, मन का मौन, परंतु ये भूले हुए हैं कि बिना मुख के मौन के मन का मौन असंभव है। तो ऐसा ही एक कवि बैठा था और अपनी लिखी हुई कविताएं पढ़ रहा था। वो एक कविता पढ़ता है जिसमें लिखा है कि मैं सम्राट हूँ, मैं राजा हूँ, दूर दूर तक मेरा शासन है, दिग दिगांतर तक मैं ही मैं हूँ। और उसे बहुत खुशी होती कि मैंने कितनी अच्छी कविता लिखी। मैं क्या हूँ, सम्राट हूँ, चक्रवर्ती हूँ। ऊपर देखता है कौवा बैठा हुआ है, वो काऊ काऊ कह रहा है। उसे लगता है इस को दुख हो होगा, ईर्ष्या हो रही होगी कि मैं इतना महान। और थोड़ी देर में कौवा कहता है सो व्हाट, कवि उसे कहता है और सो व्हाट, तुमने मेरी कविता, वो कहता है क्या बड़ी बात, सम्राट तो कोई भी बन सकता है और हम कौवाठों से क्या लेना देना। कवि को लग इस कविता पसंद नहीं आई, फिर वो अपनी दूसरी कवि निकालता है, अपनी दूसरी कवि लगता कि मेरे पास बहुत धन है, मैं कुबेर हूँ, जितना धन मेरे पास है उतना और किसी के पास नहीं है, सारा खजाना मेरा है। फिर कौवे की तरफ देखता है, कौवा कहता है सो व्हाट, तो क्या, हम कौवे को देना, धन मुझे प्रभावित नहीं करता। कवि कहता है ये सन्यासी टाइप का कौवा है शायद, इसे इस तरह की कविता है पसंद नहीं आएगी, कुछ दूसरे टाइप की कविताएं चाहिए। तो वो दूसरे टाइप की कविता पढ़ना चालू करता है, मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं, मैं मोक्ष के मार्ग का राही हूँ, मुझे मोक्ष प्राप्त हो चुका है, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। अब देखता है कौवे की तरफ, कौवा कहता है सो व्हाट, मोक्ष से हमें क्या लेना देना। वो कवि कहता है फिर तुम्हें लेना देना किससे है, वो कहता है जीवन से, जीवन अब है, जीवन सतत है, हम इस पल जीने वाले, और मनुष्य की सारी दौड़ धन की दौड़ है, यश की दौड़ है, या तो इन दोनों से छूटकर मुक्ति की दौड़, इसके अतिरिक्त तो और कहीं नहीं भागता है। वो पैसों की तरफ भागता है, सक्सेस की तरफ भागता है, या तो इन दोनों से जब धोखा मिलता है और वैराग आता है तो सोचता है ये सब छोड़ो, अब कहाँ चलो, भगवान की ओर, मुक्त हो जाओ। पर ये तीनों ही चीजें उसे अहंकार से ही भरती है और कुछ नहीं। अहंकार वैसे ही खड़ा है, ईगो, पहले ईगो इधर था, धन संपत्ति मित्र संबंधी ये सब छोड़ दिया, फिर इधर आ गया, अभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। पर किसे हो रहा है, मुझे, मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। वो अहंकार वैसा ही है अलौकिक। अहंकार से कैसे मुक्त हो, ये प्रश्न पूछा जाता है, क्या उत्तर है, ईगो, वो सब सुन रखा है, सरेंडर, मैं सरेंडर, मैंने सरेंडर किया, वो अभी भी बना है, कुछ भी करो। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, अहंकार से कैसे मुक्त हो, कुछ भी करो, अहंकार पुष्ट ही होता है, कुछ भी करो, मैं निरंकारी हूं, मेरे जैसा कोई निरंकारी दूसरा कोई नहीं, मैं सबसे बड़ा निरंकारी हूं। असफलता थोड़े देर के लिए अहंकार को तोड़ देगी, फिर अहंकार पुष्ट होगा कि मेरे पास असफलताओं का बहुत अनुभव है। एक्चुअली अहंकार पर डायरेक्ट आक्रमण बिल्कुल नहीं किया जा सकता, और इस ये प्रश्न ही गलत है कि अहंकार से कैसे मुक्त हो। अहंकार से मुक्ति का मार्ग नहीं, अहंकार गिर जाए, अहंकार गिर जाए पत्ते की तरह, सूखे पत्तों की तरह। हम उस पर सीधा आक्रमण करते अलग अलग रीति से, इसलिए वो पुष्ट ही होते रहता है। वो गिर जाए, कुछ भी होता रहे, इससे मुक्ति का मुक्ति कहो या इससे परे जाना है, मुक्त नहीं होना है, परे निकल जाना, कि वो बहुत छोटा हो जाए। एक ही मार्ग है साक्षी, जो हो रहा है स्तुति निंदा दोनों ही अहंकार को कुछ करता है। अहंकार बड़ी फ्रेजाइल, बड़ी नाजुक वस्तु है, स्तुति होते ही फूलता है, अपमान होते ही सिकुड़ता है। दोनों ही आने दो, दोनों को ही देखते रहना कि, और साक्षी होके देखते रहना, अब अपमान हुआ ये हो रहा है, अब स्तुति हुई ये हो रहा है। यही अभ्यास है साक्षी का, जो धीरे 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 उसे पार ले जाएगा। अहंकार से मुक्ति नहीं, अहंकार से परे जाना है, मैं से परे। तो कल हमने देखा था सच्ची गीता, ये किताब कब लिखी गई, 61 में एक दूसरी किताब आई, द ग्रेट कॉन्ट्रास्ट, द ग्रेट कॉन्ट्रास्ट। 64 में बाबा ने कह दिया एक दिन, ये जो ज्योतिर्लिंगम है, ज्योतिर्लिंगम नहीं होता है, ज्योतिर्बिंदु होता है, जाओ जाकर बिंदु लगा के आओ। 64 दिसंबर भारत में पोप आया, पोप पॉल। सबसे पहली यज्ञ की प्रदर्शनी कहाँ पर हुई, फर्स्ट एग्जीबिशन ऑफ यज्ञ, मुंबई, मरीन ड्राइव, विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी, 29 दिसंबर 1964। किसने उद्घाटन किया, मम्मा को बुलाया गया था। तो घटनाओं का ये क्रम है इतिहास का, 60 61 63, कब एग्जैक्टली कब हुआ ये बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि जो बताने वाले भी है उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि बहुत समय बीत गया है। इसलिए इतिहास जैसा है वैसा कभी भी लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक का बताने का तरीका, वर्शन अलग अलग है, हर एक अपना कुछ ना कुछ तो उसमें जोड़ेगा ही थोड़ा थोड़ा, न चाहते हुए भी। तारीखों का एग्जैक्ट डेट्स, बहुत सारी तारीख पता नहीं है, कुछ कुछ तारीख है जो पता है, और ये टाइमलाइन को पकड़ के रहना है इतिहास को यदि समझना है। तो कल हमने देखा था कौन सी किताब, द रियल गीता। ऐसे बहुत से भाई बहने हैं जो उस समय ज्ञान में आए, और वो ज्ञान में केवल इस किताब की वजह से आए, जो किताब हमने कल यहाँ दिखाई थी, हिंदी और इंग्लिश। जिन्होंने भी ये किताब पढ़ी, ऐसी शॉकिंग किताब है ये, कि ऐसी बातें उन्होंने आज तक कभी सुनी ही नहीं थी, इतनी नई नई बातें उस किताब में थी, क्योंकि इस किताब को लेखक ने बहुत अध्ययन और रिसर्च करके लिखी, घंटों घंटों तक चिंतन किया, घंटों घंटों तक जगदीश भाई और बाबा का संवाद एकांत में, अकेले में हुआ। कौन से पीरियड में, 52 53 54 55 56 57 58 59, ये सब पीरियड में कई बार बैठे, कई बार बाबा सबको कहते थे तुम जब चले जाओ, और बाबा आते थे और स्पष्टीकरण होता था। उसकी ये फर्स्ट बुक जो कल यहाँ पर दिखाई थी, सुनहरे अक्षरों में, सुनहरे गोल्डन कलर, रियल गीता। और इस गीता को पब्लिश करने से पहले जगदीश भाई जी ने ये किताब, प्रिंट अभी हुई नहीं थी, मम्मा के पास लेके गए और मम्मा को दिखाई और कहा कि इसको आप देखो कैसी है। मम्मा ने बहुत, दूसरी बहनें थी, छोटी बहनें, सुदेश बहन वगैरह वगैरह, जर्मनी, उनको पढ़ने के लिए कहा, और बहुत खुशी हुई कि ये इतना बाबा की सारी टीचिंग्स अब तक की एक किताब में आ गई है, ऐसा कभी नहीं हुआ, इतनी सारी बातें उस किताब में इंक्लूड कर दी, और लेखक ने ऐसा लिखा कि जैसे परमात्मा सबके साथ बात कर रहा है, क्योंकि इस ढंग की किताब अभी तक नहीं लिखी गई थी, ये फर्स्ट टाइम थी, रियल गीता। और एक बात हमने ये भी देखा, त्रिमूर्ति मैगजीन पब्लिश हुई, कब चालू हुई, 1957। अब इस मैगजीन में इतने सारे लोगों के आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल दादी प्रकाशमणि, दूसरा आर्टिकल दादी रतनमणि, तीसरा आर्टिकल कोई दूसरी बहन, लिखने वाला एक ही लेखक है, पर किस किसके नाम डाले, सभी अलग अलग के नाम डाले हुए। इंग्लिश बुक में भी हमने देखा ये सब जैसे कि वो शुरुआती दौर था और लेखक इनकॉग्निटो रहना चाहता है। जो हम बात कर रहे थे, हर चीज ईगो को तृप्त करती है। शुरुआत से ही लक्ष्य क्या है कि मैं गुप्त रहूं। जो आर्टिकल दादी के नाम पर डाल, दादी को भी नहीं पता ये मेरे नाम का है, मैंने लिखा है, लिखे एक ही उन्होंने ही है। कहीं पर नाम डाला जा रहा है प्रकाशमणि दादी, कहीं पर मनोहर दादी, अलग 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 नाम डाले। जो ये किताब है और जो दूसरी बुक है एक छोटी स्पार्क में, उसमें इसी बुक के सारे आर्टिकल अलग अलग इसमें, और हर एक में अलग अलग नाम है, कहीं मनोहर दादी, कहीं प्रकाशमणि दादी, कहीं कुछ कहीं कुछ। क्योंकि हर चीज क्या करती है, अहंकार को तृप्त करती है। जैसे एक इच्छा, अहंकार से मुक्त होना बड़ा कठिन है, परंतु जिसे पता है कि ये यात्रा है अहंक से मुक्ति की, और जिसे ये पता है कि मुझे हर चीज अहंकारी बनाती, वो एक दिन अहंकार से मुक्त हो ही जाएगा या हर से परे चले जाएगा, पर यात्रा चालू हो जाए। आप और देखेंगे ये जो गीता लीगल लॉ जो समझते हैं, उसमें शब्द मिस्टेकन आइडेंटिटी, एक ये दिखाता है कि वो नहीं मैं ये हूं, मैं वो नहीं, मैं कुछ और हूं, और अलग अलग लोगों के पास अलग अलग रूप धारण करके जाता है, अलग अलग रूपों को से लोगों को फंसाता है। मराठी में एक ने तो में एक है, वो कहीं पर साधु महाराज बन के जाता है, लोगों को फंसाता है, वापस फिर दूसरी जगह जाता है, कुछ और बनता है, दूसरे लोगों को, ऐसे हजारों जगह जाता है, हजारों लोगों को फंसाता है, आखिर में उसको कोर्ट में खड़ा करते हैं, और एक एक पार्टी आती है और कहती है यही मेरा पति है, एक पत्नी कहती है, दूसरा कहता है यही मेरे गुरु जी, तीसरा कहता है यही मैं, पर वो ऐसा प्रूव करता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, तो मी नवेत, मैं वो हूं ही नहीं। लास्ट तक ऐसे दिखाता है कि जैसे इन लोगों को मैं जानता ही नहीं। दैट इज नोन एज द केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, पर वो ही रहता है। तो वैसा ही भगवत गीता के बारे में भी हुआ है। शास्त्र क्या कहते हैं, किसने लिखी भगवत गीता, किसने लिखी, वेद व्यास ने लिखी, पर उसमें भी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज है। कृष्ण द्वापायन व्यास, एक व्यास है, व्यास सरनेम भी है, व्यास अर्थात कंपाइलर, जो कंपाइल करता है उसको व्यास शब्द कहा जाता है, व्यास शब्द का अर्थ। पर इसमें बहुत गड़बड़ है ऑथरशिप, गीता के ऑथरशिप में कौन सा व्यास, व्यास भी कई सारे थे। कईयों का ये कहना है कि व्यास एक ये सिंबॉलिक शब्द है, बाकी टीचिंग्स जो उपनिषद की है वो गीता के रूप में प्रेजेंट की गई है, एक। दूसरा, स्वामी विवेकानंद का क्या कहना है कि प्रोबेबली शंकराचार्य वॉज द ऑथर ऑफ गीता, और उसने फिर वो भगवद गीता में डाल दी, महाभारत में, ताकि क्लाइमेक्स लाया जाए। अलग अलग लोगों के अलग अलग है। बहुत सारे लेखक हैं जिनका ऐसा कहना है कि गीता जो है किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी, हो ही नहीं सकता, इसके मल्टीपल ऑथर्स है। व्यास कोई एक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि व्यास भी बहुत सारे, कृष्ण द्वापायन व्यास, एक वेद व्यास, एक व्यास, कौन सा व्यास पता नहीं है। जो गीता स्कॉलर्स होते हैं उनके बहुत सारे अध्ययन है, वो कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू लिंक भगवद गीता टू अ सिंगल ऑथर। इंडोलॉजिस्ट जो अध्ययन करते हैं, उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया, उनका भी यही कहना है कि कोई एक ऑथर नहीं हो सकता है। तो ये एक ही शास्त्र है भारत में, परंतु इतने सारे मत है, इतनी सारे इस पर टीका टिप्पणियां हैं। शंकराचार्य की गीता अलग, अद्वैत गीता अलग, शुद्ध अद्वैत गीता अलग, अवधूत गीता विशिष्ट, कितने सारे मत है, उन हर एक की गीता अलग 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 अलग। शास्त्र एक है पर इतने सारे कंपाइलेशंस, इसलिए बाबा ने क्या कहा है, गलती हो गई है, गीता किसकी लिखी गई है और किसका नाम डाल दिया गया, नाम किसका डाल दिया, कृष्ण का, और इस नाम डालने के वजह से हानियां हुई है। टोटल ऐसी 25 हानियां जो मूल्यों में आती है, वो पहले हम देखेंगे, फिर टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक कुछ और है। सबसे पहले कृष्ण का नाम डालने से क्या हो गया, गीता का खंडन, खंडन। जो भी शास्त्र बनता है उसके बाद में क्या हो जाता है, उसमें इंटरपोलेशन हो जाता है। इंटरपोलेशन अर्थात जो आते हैं लोग अपनी अपनी बातें उसमें डालने लगते हैं, जो ओरिजिनल शुद्ध रूप रहता है वो नहीं रहता है। अगर गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाई गई है तो गीता में वो श्लोक कहाँ से आए जो उपनिषदों में पहले ही थे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर है, इसलिए बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। तो मुरलियों में ऐसी ये 25 बातें आई है। सबसे पहले गीता में कृष्ण का नाम डालने से क्या हो गया, गीता खंडन हो गई। दूसरा 100% झूठी हो गई, क्योंकि कल भी हमने देखा था गीता में ऐसे ऐसे श्लोक है कि जो ये दिखाते कि भगवान सर्वव्यापक है। महात्मा गांधी ने कहा है गीता मेरी क्या है, स्पिरिचुअल डिक्शनरी है। जब भी मुझे कोई समस्या आती है तो मैं क्या करता हूँ, गीता को खोलता हूँ, उत्तर मुझे मिल जाता है। तीसरा, गीता का मान कम हो गया है। चौथा, हजार बार रात दिन बैठ पढ़ो तो भी फायदा नहीं है। एक मुरली में बाबा ने क्या कहा है गीता के लिए, कि हजार बार दिन रात बैठ कर भी पढ़ो तो भी कोई फायदा नहीं है। रियल गीता कौन सी है, मुरलिया, 5 साल की मुरलिया और सारी अव्यक्त वाणिया। यदि गीता का रियल अध्ययन करना है तो कौन सा अध्ययन करना है, मुरलियों का अध्ययन, उसमें सभी प्रश्नों का उत्तर है। अगला, मनुष्य का पतन हुआ है। अगला, कंगाल बन गया है मनुष्य। अगला, भक्त भगवान से दूर हो गया है, क्योंकि इसको सभी लोग नहीं मानते। जो इस्लाम में जिसका जन्म हुआ है वो नहीं मानता, जिसका क्रिश्चियन में जन्म हुआ है वो इसको नहीं मानता है, जिसका दूसरे धर्म में जन्म हुआ है वो इसको क्यों मानेगा। स्वराज्य प्राप्ति के बदले और ही झूठ कंड में आ गए, परमात्मा को कोई जान नहीं सका। अगला, ऑर्फन हो गए, परमात्मा से विपरीत बुद्धि हो गए, पतित हो गए। बहुत गहरी गहरी बातें हैं मुरलियों में। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए, नास्तिक और निधन के हो गए, कौड़ी तुल्य हो गए, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, आस्तिक होने के बदले और ही क्या बन गए, नास्तिक बन गए, बुद्धि मलिन हो गई। भगवद गीता की इतनी महिमा है संसार में, जो वर्तमान में भगवद गीता है, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ सब जगह भगवद गीता बांटते थे, गांव गांव में जाकर कि सबका कल्याण हो, क्योंकि इसी के अध्ययन से सबका कल्याण। और भी गांव में जाते, कोई खरीदता कोई लेता था, बस टाइम का है। तो शिष्यों ने बिना गुरु से पीछे पूछे एक युक्ति की, भगवद गीता के अंदर 500 रुपये की एक नोट डाल दी ताकि लोग, और थोड़ी सी दिखा दी, फिर लोग लेने को नहीं आ रहे और फिर उन्होंने कहा ये रुकने से कोई नहीं, क्योंकि लोगों को वैल्यू ही नहीं है। गुरु ने पूछा तुमने किया, उन्होंने कहा हमने ऐसा ऐसा किया, 500 रुपये की नोट डाल दी। तो गुरु ने कहा भगवद गीता यहाँ के लोग, वो कहते हैं यहाँ के लोग एकदम नास्तिक होंगे इसलिए तो नहीं कहते, वो कहते हैं तुमने बिल्कुल गलत समझा है, ये भगवद गीता में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि ये यहाँ जहाँ रख दी जाती है वहाँ के वातावरण पवित्र हो जाता है। पढ़ने की तो बहुत दूर की बात, लोगों ने केवल देखा होगा और उनमें वैराग आ गया होगा, उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई होगी इसीलिए उन्होंने नहीं पढ़ा। मूर्ख तो तुम हो, कि तुम भगवद गीता मानी चाहिए तो काम किया। तो इतना मानते हैं लोग इस गीता को, गीता को कहा हो, ये होता है ना सभी धार्मिक ग्रंथ हो जाता है, हम न महत्व वही गीता है। अगला, भारत के बाद और कम हो गया, महिमा जितने ही रही, अब भारत हो गया, भारत भ्रष्टाचारी हो गया, भारत का महत्व कम हो गया, गरीबी भी बढ़ गई। एक मुरली में हमें कृष्ण के क्या हो गया, रचयिता बन गया, रचना ही क्या बन गया, रचयिता। तो ऐसी 25 बातें है मुरलियों में आई हुई है। तो जैसे बाबा ने कहा नाम था किसका, उसका, किसका डाल दिया, कृष्ण का। इसको कहते मिस्टेकन आइडेंटिटी। ये तो हो गया गीता की बात, पर ऐसी ही मिस्टेकन आइडेंटिटी हमारे जो रही है, किया उस और नल दिया हमने अपना अहंकार, किस किस में, हर बात में मुख। ठीक है, गीता के विषय में अभी इसका काफी विस्तार हो गया, ये हम बातें कर रहे हैं 1960s की, इसलिए उस समय मुरलिया ऐसे आता था, ये नई बात है, क्योंकि उनके लिए नई थी वो। हम 5-5 साल कितनी बार सुन रहे हैं, कितनी बार सुन चुके हैं, कितनी बार रिपीट हो गया ये 5 साल, 11। 5-5 साल की मुरलिया कितनी बार रिपीट हो गई है, 11, 11वां चल रहा है, तो लगभग 11। तो मिस्टेकन आइडेंटिटी सबसे पहला है हमारा ज्ञान में। जैसे ही हम ज्ञान का चिंतन मनन अध्ययन करते हैं, तुरंत एक अहंकार घेरता है, कौन सा? कि मैंने जान लिया, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी है। ज्ञान इतना विशाल है, बाबा ने खुद कहा है कि मैंने तुमको जितना कुछ सुनाया है क्या वो संपूर्ण है? एक बूंद है, कितना सारा वो सुना ही रहा है, परंतु वो भी पूरा नहीं है। तो ज्ञानी की सबसे पहली निशानी क्या है? कि मैंने कुछ भी नहीं समझा, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। निरंतर पिपासा, जिज्ञासा बनी ही रहे, जितना जानेंगे उतना कम जानेंगे। और जिस दिन हमको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने कुछ नहीं जाना, तब कहा जा सकता है कि थोड़ा जाना है। तो ये मिस्टेकन आइडेंटिटी है। सबसे पहली चीज ज्ञान के विषय में रुकना ही नहीं है, पढ़ते जाना। और ज्ञान प्राप्ति के विधियां क्या क्या है? एक तो पढ़ना, बुक्स, आर्टिकल्स, लिखना पढ़ना। एक विदेशी बहन ने लिखा है जगदीश भाई जी के लिए कि हम सोचती थी मिथ नंबर 1, मिथ नंबर 2, मिथ नंबर 3, मेरे भ्रम थे ऐसे जीवन के जो इसको देखा और मेरे सारे भ्रम टूटे इस आत्मा को देखकर। पहला ये, मैं ये सोचती थी कि बहुत अच्छा लेखक है, लेखन करने के लिए एकांत चाहिए, मौन चाहिए, पर मैं इनको देख रही हूं, ये सारी सेवाएं कर रहे और लिख भी रहे, ना तो एकांत है ना तो मौन है, फिर भी बस लगन चाहिए कि मुझे करना है। किसने दिया है ये काम? मुझे करना है। 6 बजे पोस्ट जाती थी और रात को सोते सोते कभी 11, सभी 11, 11:30 बजते थे, क्योंकि रात भर अध्ययन और ये पढ़ाई लिखना, और वापस 2 बजे उठते थे। मनोहर दादी ने अपने अनुभव में लिखा है कि जगदीश भाई 10, 11, 11:30 बजे सोते थे, 2 बजे उठते थे और वो लिखते थे, और फिर मुझे उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता था क्योंकि पोस्ट सुबह 6 बजे जाती थी। मैं ये सोचती थी ये व्यक्ति सोता कब है कि सोए 11, 11:30 बजे, उठे 2 बजे, 2 बजे वापस उठ के लिखना चालू। तो जहां लगन है वो अपने आप निद्राजित अवस्था आ जाती है अपने आप। और एक कि मुझे जानना है, समझना है, सबका कल्याण करना है, कोई भी ना छूटे। नींद है मतलब लक्ष्य की विस्मृति है। हम घर में हैं, किसी एक व्यक्ति बुद्ध के पास आए और कहने लगा कि मुझे ज्ञान चाहिए, आपका ज्ञान सुना है बहुत अच्छा है। बुद्ध कहते हैं अभी दे दूं क्या? वो तो एकदम डर जाता है, पता नहीं उसको लगता है क्या देंगे, वो कहता नहीं बाद में आता हूं पता नहीं सन्यासी बना दे अपने जैसा, मैं गृहस्थी ठहरा वो कहता थोड़ा रुको। वो बुद्ध उसको उदाहरण देते, सोचो तुम्हारे घर में आग लगी है, तुम सोए हुए हो, तो क्या कहोगे? कि मैं कल सुबह उठ के भागता हूं, कैसा कहोगे? आग अगर लग जाए आधी रात को और बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद, बिल्कुल अभी फोन है, हम फोन भी नहीं उठा रहे, इतना नींद आ रही है, और अचानक आग लग गई, तो क्या करोगे? उठ के भागोगे ना। संसार को इस समय आग लगी हुई है, संसार रूपी घर को इस समय आग लगी हुई है, अर्जेंसी है, इमरजेंसी सिचुएशन है ये। अभी ब्रह्मा कुमारी जी तार ले लो अभी इमरजेंसी सिचुएशन चल रही है, क्राइसिस सिचुएशन चालू है ये। संसार इस समय क्राइसिस में, क्लाइमेटिक क्राइसिस, हर प्रकार का क्राइसिस चालू है, स्पिरिचुअल क्राइसिस है, अभी करना है। तो सबसे पहला किस में हो जाता है? ज्ञान। ये नहीं समझना है मैंने जान लिया, मैं बहुत समझ लिया, कुछ भी नहीं समझा और बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। एक दूसरा है योग। हम जो योग लगा रहे हैं और योग लग भी रहा है, पर एक भूल रहे हैं कि ये जो हम योग कर रहे हैं वो भी किसकी कृपा है? उसकी। तीव्र पुरुषार्थ भी जो किया जा रहा है वो बिना उसकी कृपा के हो ही नहीं सकता। अहंकार जो है वो रावण है, ऐसा कहते हैं, उसको खत्म करने के लिए राम को ही आना पड़ेगा। बाकी सारे जो लोग हैं वो बाकी सबको मार सकते हैं, पर रावण को यदि मारना है तो बिना परमात्मा कृपा के वो हो नहीं सकता। इसलिए जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगर उसमें जरा भी पुरुषार्थ का अहंकार आ गया कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, दूसरे कुछ भी नहीं करते, तो क्या होगा? तुरंत मिस्टेकन आइडेंटिटी है। गीता में कृष्ण के शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया, सेम ऐसा ही है। ये सब भी वही सारे मिस्टेकन आइडेंटिटी के केसेस है। तीसरा है सेवा, जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं यदि उसकी छत्रछाया हट जाए तो क्या होगा, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए निरंतर क्या भाव हो कि ये सेवाएं मेरे द्वारा की जा रही है, मैं मुझे निमित्त बनाया इसके लिए, वो चाहे तो किसी और को भी निमित्त बना सकता था, ये हमारा भाग्य है। उसके पास लोगों की कमी नहीं है, क्या कमी है, वो क्रिश्चियनिटी में कहते हैं वो राजा है, उसकी सेवाओं के लिए तो हजारों लोग हैं, पर हे प्रभु तूने मुझे नियुक्त किया अपनी सेवा के लिए, ये मेरा भाग्य है। उसके पास कैंडिडेट्स की कमी है क्या, दुनिया भरी पड़ी है, किसी को भी कभी भी टच करा सकता है, पर ये हमारा भाग्य है कि मुझे इस सेवा केंद्र या ये जगह या ये स्थान की सेवा का निमित्त बनाया है, यह डिपार्टमेंट जो भी। तो निरंतर ये भाव रहे कि ये सेवाएं वो करा रहा है ऊपर से। दादी जानकी ने एक बार प्रश्न पूछा था, कौन हो, टीचर बहनों से कौन हो, सेवाधारी हो, दूसरा निमित्त हो या कठपुतली हो, कठपुतली हो, सेवाधारी हो या निमित्त हो, क्या हो, कठपुतली सीधा तीनों है परंतु स्टेजेस है, शुरुआत होती है सेवाधारी, सेवा कर रहा हूं, ये भी बहुत बड़ा भाव है। लोग सेवा का करते हैं संसार में, सेवा शब्द ही बहुत बड़ा है सेवादर, सेवादर कहते हैं संसार में, सेवादार, सेवादर, सर्वर, पहले तो ये सेवा है एक भाव। तो उसके भी ऊपर की स्टेज है निमित्त, मतलब कोई दूसरे भी बन सकता था, मुझे बनाया गया और मैं जैसे निमित्त हूं, ये भी सारे निमित्त है। और तीसरा है कठपुतली, में कुछ हुई नहीं, जो करा रहा है वो ऊपर से, उसके हाथ में है सब कुछ, तो वो घुमा रहा है। तो तीसरी बात है सेवा। चौथी धन, धन भी जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास जो कुछ भी है वस्तुएं और धन सब उसी का दिया हुआ है, ऐसे भक्ति में मानते हैं ना, तो उसका दिया हुआ उसी के कार्य में सफल हो, ख्यानत नहीं करना है बिल्कुल, ये उसका दिया हुआ है उसी के कार्य में लग जाए। हमारा सब कुछ, कुछ भी जो है, जैसे कल भी सुनाया था कि मेरे नाम पर कुछ भी ना हो, सफल करते जाओ, इतनी वस्तुएं हमारे पास है व्यर्थ की रखी हुई है, क्या करना है उनको दे दो जिसको देना है, सफल कर दो चीजों को, काम आएगी उनको। एक तो ये, फिर है बुद्धि, बुद्धि में अहंकार, किस बात का अहंकार होता है बुद्धि में, विशाल बुद्धि है या फिर विशेषताओं का, स्पेशलिटीज का, या फिर किसी स्किल का, ये मेरे पास स्किल है लिखने की, बोलने की, करने की, कुछ भी स्किल, या दूसरे में है, ये सब क्या है, प्रभु प्रसाद। और किस में आता है, मैं, अहंकार, पद, ये जो पद दिया गया है किसने दिया, उसी ने दिया है, पोजीशन किसने दी, उसी ने दी, चाहे लौकिक की भी पोजीशन क्यों ना हो, वो भी उसी के द्वारा दी गई है। अगला, और डिग्री, और सफलता, सफलता होती है तो क्या होता है, तुरंत व्यक्ति फूल जाता है, असफलता हुई तो तुम्हारी वजह से, सफलता हुई तो मेरी वजह से, अगर ये मैंने नहीं किया होता तो सफल होता ही नहीं था, असफलता हुई तुमने ये गलती कर दी, नहीं तो ये बहुत अच्छा होता, सफलता का अहंकार, और प्रॉपर्टी, और अनुभवों का, ये तो बहुत सूक्ष्म अनुभव है, अहंकार है, मेरे पास 40 साल का अनुभव है तुम अभी अभी आए, मेरे पास क्या है, अनुभव, ये तो सबसे सूक्ष्म अहंकार है। और सौंदर्य, सौंदर्य का अहंकार, बॉडी का अहंकार, और पुराने होने का, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, तुम अभी अभी आए हो, तुम्हें कुछ पता नहीं यहाँ का, हम बहुत पुराने हैं, और अनुभवी हो गया, और साधन हमारे पास ज़्यादा है, और हमारी क्या, सपोर्टिंग फैमिली मेंबर्स, ये भी हो सकता है, हमें प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, हमारे केयर टेकर बहुत है, सेवादारी बहुत है, और त्याग का, ये तो उससे भी सूक्ष्म है। हमने जितना त्याग किया, हमारे त्याग के सामने तुम्हारा कुछ भी नहीं, हम सब कुछ छोड़कर यहाँ आए। तुम आ सकते हो क्या? भोजन का भी अहंकार होता है, हम ये खाते हम वो नहीं खाते, तुम वो खाते हम ये खाते, धारणाओं का, पवित्रता का अहंकार, प्यूरिटी का भी बहुत भयंकर अहंकार होता है लोगों को, ब्रह्मचर्य का अहंकार। एक तो होता है ब्रह्मचर्य पावर है, पर उसका भी अहंकार, जो एक बार सुनाया था, कोई एक बहन थी, यहाँ की नहीं संसार की बात है, कि जिसको बस एक ही साधना करनी थी और वो ब्रह्मचारिणी थी और वो गृहस्थियों से बिल्कुल नफरत करती थी, देखना भी नहीं चाहती थी उनका मुंह, वो बिल्कुल उसके सामने भी आते थे कहते थे पतित हटो यहाँ से, इतना उसको ब्रह्मचर्य का अपने साध्वी थी, बिल्कुल ऐसी थी। तो उसको एक बार इच्छा हुई कि मैं जानूं कि मैं पूर्व जन्म में क्या थी, वो गुरु के पास गई, गुरु से कहा कि मुझे पता करना है। गुरु ने कहा छोड़ो क्या करना है, उसने कहा नहीं मुझे पता करना है, जाति स्मरण ये क्रिया है, जाति स्मरण की, जाति स्मरण मुझे कराओ। गुरु उसको बहुत मना करते, पर फिर भी वो मानती नहीं, कहती मुझे जानना ही है, और फिर वो क्रिया चालू करते, एक दो दिन कुछ हफ्ता कुछ भी नहीं हो रहा है, वो कहती और क्या करूँ, गुरु कहते और गहराई में जाओ, और दरवाजा खुलेगा, पीछे जाओ, गर्भ तक पहुँचो, फिर दरवाजा खुलता है और फिर पूर्व जन्म में प्रवेश होता है। तो ये रोज रोज कर रही, और एक दिन आधी रात को उठ के भाग के अपने घर से आती है गुरु के पास कि बचाओ बचाओ बचाओ। गुरु कहता क्या हुआ, वो कहता मैंने देख लिया मैं क्या थी पिछले जन्म, पर अब मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे भूलूँ। तो क्या देखा तुमने, वो कहती है मैंने देख लिया मैं एक वेश्या थी, अब मुझे कुछ भी नहीं भूल रहा है, क्योंकि जब पुरानी स्मृति आती है तो सब कुछ याद आ जाएगा, सब फ्लड गेट्स, वो गेट एक बार खुल गया तो बाढ़ आएगी, इसलिए प्रकृति ने बहुत अच्छा किया, गेट को बंद कर दिया। अगर किसी को यहाँ याद आ जाए पूर्व जन्म तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ये इस जन्म की समस्या का कम है। और वो परिचित तो है, फिर कैसे हो जाएगा, बेटा इतना छोटा जिससे इससे प्यार करते वो पता चल गया पिछले जन्म में सास थी, तो जिसने जलाकर मार दिया था, हम क्या करेंगे उसका। कैसा प्यार करेंगे बच्चे को, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा, तो प्यूरिटी का भी अहंकार, भोजन का भी अहंकार, हम यहाँ का नहीं खाते हम वहां का नहीं खाते, स्थान का, हम यहाँ रहते, हाँ यूनिवर्सिटी का, हम इस यूनिवर्सिटी से हमने किया, अपने जाति का, हम ब्राह्मण कुल के, हम बचपन से ही ब्राह्मण कुल के, अभी ब्राह्मण परिवार में यहाँ चल रहे, परंतु अहंकार किसका है, हम तो लौकिक में ही ब्राह्मण थे, डबल नशा, वो भी एक अहंकार है। इसलिए कहा कि इस संसार की हर चीज अहंकार को भरती है, हर चीज, जो भी कुछ करने जाओ अहंकारी होता है, इसलिए क्या करना है, कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल रुक जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी अच्छा बुरा जो भी, अहंकार ही तृप्त होता है। कुछ ना करने का अर्थ है साक्षी भाव, कुछ ना करना मतलब स्थूल में कुछ करना नहीं, वो नहीं, किया और डिटैच हो जा, किया और डिटैच हो जा, फिर परिणाम का हमें कुछ लेना देना नहीं, कह दिया बोल दिया सेवा कर ली और अलग, डिटैच्ड, बस यही साधन है अहंकार से मुक्ति की, और कोई अहंकार से मुक्ति से ज्यादा अच्छा शब्द है अहंकार से परे जाना, विकारों से मुक्ति से अच्छा शब्द है विकारों से परे जाना, कि विकार व्यर्थ हो जाए, एकदम व्यर्थ हो जाए, मीनिंगलेस हो जाए, उसका कोई मतलब ही नहीं हमारे लिए, वो वास्तविक ब्रह्मचर्य है, वास्तविक प्योरिटी की अवस्था है। तो ये मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से जो भारत का इतना नुकसान हुआ, पतित हो गए, भ्रष्ट हो गए, गरीब हो गए, वो हम भी यहां हो रहे, कंगाल हो गए मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से। तो क्रांति है ये, और ये पर्व मना रहे हम, ये जारी रहे, एक एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखते जाना है, एक एक दिन अपने कुछ ना कुछ विकार को या अहंकार को आइडेंटिफाई करना है, हर चीज मुझे भर रही है अहंकार से, कौन सा अहंकार मुझ में है, किस बात की अकड़ है, और अहंकार को तोड़ने की कौन कौन सी विधियां हैं, एक तो असफलता आती है तो अहंकार टूटता है, अपमान होता है तो अहंकार टूटता है, धोखा होता है तो अहंकार टूटता है, इसलिए इन चीजों से नफरत नहीं करनी है, ठीक है हो गया बहुत अच्छा, अहंकार तो टूटा, हाँ नफरत क्या करे किससे, नफरत बेचारा जो अहंकार अपमान कर रहा है, कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है उसको, हमें तो पर मतलब वो हम दिखेंगे, फिर उसको सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेगा माइंड में, बहुत प्लानिंग चाहिए किसी को फंसाने के लिए, अपमान करने के लिए, किस पर व्यंग बाण छोड़ने के लिए कितना सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, हाँ कब गलती करे, कितना कंटिन्यू ध्यान रखना पड़ता है उसकी तरफ, कौन सी बात बार बार जाते रहो, पर दुखी नहीं होना है क्योंकि वो उसमें पावर ज़्यादा होती है, निगेटिव वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं तो दुखी होने के चांसेस भी होते हैं डिप्रेशन में जाने के, इसलिए स्टडी करते रहना, एक एक दिन कुछ ना कुछ नया रियलाइजेशन होता रहे, बस यही क्रांति है। ओम शांति।
क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। यज्ञ के ही मंत्र से विश्व को गौरव मिलेगा, दिव्य पावन मंत्र से ही सूक्त मन सरसिज खिलेगा। सब चले मिल शक्ति बनकर, सब चले मिल शक्ति बनकर, शांति का संदेश लेकर, शांति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। धर्म के प्रहरी बने हम, मान संस्कृति का करें हम, ज्ञान की पावन ऋचा से योग का मंदिर रचे हम। अग्निपथ पर बढ़ चले हम, अग्निपथ पर बढ़ चले हम, मुक्ति का संदेश लेकर, मुक्ति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया।